सभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय श्री यशोदा दामोदर की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर असादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। दामोदराष्टकम के ऊपर विशेष कथा के तीसरे दिन पर आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब सुन चुके हैं, हम जानते हैं कि दामोदराष्टकम जो सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित है एक नित्य सिद्ध प्रार्थना है जिसके बारे में हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि कार्तिक महीने के प्रतिदिन दीपदान करते समय हमें इस प्रार्थना का पठन करना चाहिए। ये व्रज प्रेम से भरी हुई प्रार्थना है। जो भक्त वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं उनके लिए कई प्रार्थनाएं भक्ति शास्त्रों में पाए जाते हैं। उनमें से ये दामोदराष्टकम एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। दो श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, पहले दो। दूसरे श्लोक की चर्चा पूर्ण नहीं हो पाई, कल थोड़ा कुछ रह गया है। तो संक्षिप्त में कल जो चर्चा हुई थी वो हम पुनः कह दें। दूसरा श्लोक, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्ति बद्धम। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला विशेष का वर्णन इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि करते हैं। वो भगवान जिनके भय से सारा विश्व रोता है, वो स्वयं रो रहे हैं। अब जो निर्भय होता है, जो शक्तिमान होता है, परम नियंत्रक होता है, हम कल्पना कर सकते हैं कि उसे रोने की क्या आवश्यकता है। परंतु वृंदावन लीला है ही इतनी अद्भुत कि यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण रो रहे हैं, रुदंतम। कैसे रो रहे हैं? मुहुहु, बार बार रो रहे हैं। और सातंक नेत्रम, उनकी आंखों से भी ये भय दिखाई पड़ रहा है। यहां वहां देख रहे हैं और आंखों से ये स्पष्ट हो गया है कि वो बहुत भयभीत हैं। और साथ साथ कराम भोज युग्मेन, अपने कर कमलों के द्वारा नेत्र युग्मम, अपने दो नेत्रों को मृजंतम मसल रहे हैं। और ऐसे मुहुश्वास, रोते रोते भारी सांस लेते हुए बार बार मुहु कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम, उनके तीन रेखाओं से अंकित कंठ के ऊपर जो मोतियों की माला है वो हिल डुल रही है। और ये है भगवान दामोदर। तो ऐसे भगवान दामोदर का स्मरण सत्यव्रत मुनि करते हैं। और इसलिए यहां पर अंतिम दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति बद्धम। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो बंधे नहीं जा सकते, ऐसी कोई शक्ति संपूर्ण सृष्टि में नहीं है जो कि परम नियंता, परम शक्तिमान श्री कृष्ण को बांध सके, बल्कि श्री कृष्ण ही सभी को बांधते हैं अपने कड़े नियमों के द्वारा। परंतु एक और केवल एक चीज है जो कि भगवान श्री कृष्ण को बांध सकती है, और वो है प्रेम, भक्ति। तो माता यशोदा के प्रेम से बंध गए हैं श्री कृष्ण, न कि किसी रस्सी से, न कि किसी भौतिक प्रयास से, न कि ताकत से माता यशोदा की। माता यशोदा के हृदय में जो वात्सल्य प्रेम निवास करता है, उस प्रेम ने श्री कृष्ण को वशीभूत कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण बंधने के लिए तैयार हो गए। ये भगवान की विशेषता है, लीला विशेष। ऐसे लीलाएं केवल वृंदावन धाम में पाई जाती हैं। तो ये संक्षेप की चर्चा है कल की, परंतु एक बात रह गई थी, क्योंकि यहां पर एक बात बताई गई है कि भगवान रो रहे थे, बार बार रो रहे थे, उनकी आंखें भी भय के मारे इधर उधर भटक रही थीं। तो अभी श्री कृष्ण के भय के संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक मुद्दा उठाते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा में और द्वारका में निवास करते हैं, अवश्य नरलीला करते हैं। नरलीला का मतलब ये नहीं है कि वो नर या मनुष्य है। नरलीला का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि सदैव भगवान है, कभी भी मनुष्य नहीं होते, वो भगवान भगवान ही रहते हैं। परंतु जब वो भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, मनुष्यों के बीच में उठते बैठते हैं, उनका रहन सहन बोलचाल उनकी मनुष्यों की तरह दिखाई पड़ती है, जैसे कि राम लीला में हो, कृष्ण लीला में हो, तो इसे नर लीला कहते हैं। तो ये नर लीला बहुत मीठी या मधुर मानी जाती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका और मथुरा में जब नर लीला कर रहे थे तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इनको ये अच्छी तरह से सदा सदैव ये पता था, उनको ज्ञात था कि वो भगवान हैं। यद्यपि मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कभी राजकुमार होकर कभी युद्ध कर रहे हैं तो कभी भगवान अर्जुन को उपदेश गीता का दे रहे हैं तो कभी सांदीपनि मुनि के आश्रम में कुछ सीख रहे हैं, कभी अपने रानियों के साथ में रमण कर रहे हैं द्वारका में, तो चाहे वो जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे वो मधुर लीलाएं हों या ऐश्वर्यपूर्ण लीलाएं हों, भगवान को अपने स्वरूप का ज्ञान होता था और सदैव होता था। ऐसा कोई समय नहीं था जबकि भगवान भूल जाते थे कि मैं भगवान हूं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रश्न ये है, तो क्या जिस प्रकार से मथुरा और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ज्ञान सदैव होता है, दूसरे शब्दों में जिस प्रकार से मथुरा और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण सदा जानते हैं कि मैं भगवान हूं, क्या इसी तरह से वृंदावन में भी वो हमेशा जानते हैं क्या कि मैं भगवान हूं? कभी कभी जानते हैं लेकिन हमेशा क्या वो जानते हैं? मथुरा और द्वारका में हमेशा जानते हैं, तो वृंदावन में क्या हमेशा अपने भगवत्ता को जानते हैं, याद करते हैं? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि इस प्रश्न का उत्तर हम हां कह के कह दें कि हां उन्हें अपनी भगवत्ता का स्मरण सदैव वृंदावन में भी रहता था, तो फिर दामोदर लीला नहीं हो सकती थी। और दामोदर लीला में जो कृष्ण का भयभीत होना या कृष्ण का रस्सी से बांधे जाना, ये संभव नहीं हो पाता। तो यदि कोई ऐसा तर्क करे कि ये तो भगवान है ना, सर्वशक्तिमान है, अन्यों को भय में डालते हैं, स्वयं कैसे भयभीत हो सकते हैं? भयभीत वो व्यक्ति होता है जिसको कि कोई दूसरा, जिसके प्रति दूसरा व्यक्ति कोई हानि कर सकता है। कोई हमारे सामने ऐसे व्यक्ति हो जो हमें हानि पहुंचा सकता है तो डरने की बात है, लेकिन जब कृष्ण की परिस्थिति, कृष्ण का स्थान ऐसा है कि उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कैसे कृष्ण डर सकते हैं? ऐसा कोई तर्क करते हैं। तो फिर आगे इस तर्क को बढ़ाते हुए कहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि यहां इस श्लोक में जो कृष्ण के भय का वर्णन हुआ है, सतांक नेत्रम मुहु श्वास इत्यादि रुदंतम मुहु, ये सब भगवान श्री कृष्ण नाटक कर रहे हैं, ये नकल कर रहे हैं भयभीत होने की। वास्तव में डरे हुए नहीं हैं, केवल ऐसे नकल कर रहे हैं रोने की, क्योंकि उनको लीला करनी है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो निष्कर्ष महान भक्तों के विचारधारा के अनुसार नहीं है, जो महान भक्त हैं भगवान के वो इस तरह नहीं सोचते हैं, वो नहीं मानते हैं कि श्री कृष्ण नकल कर रहे थे। और महान भक्तों में से एक हैं कुंती देवी, कुंती महारानी जो कि पांडवों की माता हैं, वो भी महान भक्त हैं। वात्सल्य प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्त हैं, उनमें से सबसे पहला स्थान माता यशोदा का है, उसके बाद दूसरे स्थान पर नंद महाराज है, उसी तरह और भी हैं। और कुंती महारानी का स्थान सातवें स्थान पे है। अब याद रखिए, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में सातवां स्थान, हम ये नहीं सोचना चाहिए सातवां नंबर है ना, लेकिन संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में सातवां नंबर, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जब कुंती महारानी अपने भावनाओं को व्यक्त करती हैं, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, तो सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनकी प्रार्थना क्या है। कहते हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। तो गोपी अर्थात माता यशोदा आददे, उन्होंने उठाया, क्या उठाया? दाम, दाम अर्थात रस्सी। क्यों उठाया? तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, कुंती महारानी कृष्ण के सामने खड़े होकर स्तुति कर रही हैं कृष्ण के, और कृष्ण से कह रही हैं कि हे कृष्ण, जब गोपी अर्थात माता यशोदा ने रस्सी उठाई, जबकि तावत जब आपने त्वयी क्या किया था, कृतागसी, आपने उत्पात मचाया था। क्या उत्पात मचाया था आपने? आपने दही के मटके वगैरह तोड़ दिए थे, उखल के ऊपर चढ़ के वहाँ माखन चोरी करके बंदरों को बांट दिया था, ये सब उथल पुथल आपने ये हरकतें की थी वहाँ पर। तो आददे त्वयी कृतागसी दाम तावद, तो जब गोपी ने आपके इन हरकतों को देखकर रस्सी उठाई, या उस समय ते आपकी ये दशा, आपकी दशा क्या हुई थी? अश्रु कलिल, अश्रु धारा होने लगी आपकी, संभ्रमाक्षम, और आपके अक्ष, आपकी आंखें संभ्रम हिलने लगी, कांपने लगी, और अंजन, आपके आंखों में जो अंजन आदि काजल आदि लगाए हुआ था, वक्त्रम निनीय, आपके आंसुओं के कारण वो काजल आदि सब नीचे आपके गालों पे, मुख पे आ गया, बिखर गया, इसलिए वो काजल आदि सब मुंह पे आ गया, बिखर गया आपके चेहरे के ऊपर, मुखारविंद के ऊपर। और आपकी स्थिति क्या थी उस समय? भय भावनाय स्थितस्य, आपकी स्थिति ये थी कि आप बहुत भयभीत हो गए थे। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्यों? भीर अपियत विभेति, मूर्तिमान भीति, मूर्तिमान भय आपसे डरता है, और आप जिनसे सब कोई, हर एक व्यक्ति डरता है, यहां तक कि मूर्तिमान भय भी डरता है, और आप अभी डर गए हैं, तो इसलिए सा माम विमोहयति, इसलिए मैं पूरी तरह से विमोहित हो गई हूं, मैं डावाडोल हो गई हूं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे श्री कृष्ण भयभीत हो गए, श्री कृष्ण तो परम सत्य है। कुंती महारानी और माता यशोदा में एक अंतर है, जिसके कारण कुंती महारानी का स्थान 7वां है और माता यशोदा का पहला। वो अभी अभी मैंने आपको बात बताई कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण की भगवत्ता को कभी जानती हैं कभी नहीं जानती हैं, और अब जानती भी हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके लिए, उनके लिए कृष्ण उनके पुत्र ही रहते हैं सदैव। परंतु ये जो एक ऐश्वर्य ज्ञान है, भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान, ये द्वारका और मथुरा के भक्तों में प्रधान रहता है। जिस प्रकार से भगवान का भी ऐश्वर्य ज्ञान अपने बारे में रहता है कि मैं भगवान हूं, वैसे उनके भक्तों के मन में भी यह विचार रहता है। इसलिए कुंती महारानी ये कह रहे हैं कि आप मूर्तिमान भय को भयभीत करने वाले हैं। वैसे भी ये सही बात है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में भी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने टीकाओं में कहा है, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चंद्रस्य मृत्युर्धावति पंचमः। कि भीषास्माद् वातः पवते, जो पवन है वो बहता है कृष्ण के डर से, क्योंकि वो कृष्ण के अधीन सारे अपना कार्य करता है। जो वायुदेव हैं, जितने भी देवता हैं, ये सारे प्रकृति के कार्यों को संभालते हैं, वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सारे कार्य संभालते हैं। और जब वो ठीक से काम नहीं करते तो कभी कभी कृष्ण उन्हें दंडित भी कर देते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को किया था गोवर्धन लीला के बाद। तो खैर, यहां पर जो पवन है वो भी डर के मारे बहता है कि कृष्ण की डांट पड़ेगी, हम बहेंगे नहीं। तो भीषो देति सूर्यः, सूर्य देव भी अपने उष्णता और प्रकाश को प्रकट करते हैं कृष्ण के डर से। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक सूरज की रोशनी उष्णता खत्म नहीं हो जाती। भीषास्मात् अग्निश्चंद्रश्च, तो अग्नि अपनी उष्णता प्रकाश प्रदान करती रहती है और चंद्र भी अपने किरणों को प्रकाशित कर देता है कृष्ण के डर से। यहां तक कि मृत्युर्धावति पंचमः, ये जो मूर्तिमान मृत्यु है जो हमारे पांच प्राणों के पीछे भागता है, प्राणों को शरीर से निकालने के लिए, पांच प्राण है ना हमारे शरीर के अंदर, मुख्य प्राण है, उप प्राण भी होते हैं। तो मृत्यु के समय क्या होता है कि हमारे अंदर से ही जो पांच प्राण हैं वो शरीर में से निकल जाते हैं और आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर जाते हैं, और तरह तरह की आवाजें भी आती हैं ऐसे व्यक्ति में जब प्राण निकल रहे होते हैं शरीर में से। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इसलिए कुलशेखर महाराज ने प्रार्थना की है कि हे भगवान कृष्ण, जब प्रयाण काल में, जबकि कफ वात पित्त आदि सब इकट्ठे हो गए हैं और प्राण निकलने की तैयारी में है, इतना कष्ट होता है तो आपका स्मरण कैसे हो पाएगा। इसलिए अभी जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमें ले जाइए, आपके चरण कमलों में स्थित कर दीजिए। तो मृत्यु भी, जो मृत्यु के देवता हैं, वो भी सभी बद्ध जीवों का पीछा करते हैं। मृत्यु निश्चित है सबके लिए, ये इसलिए क्योंकि मृत्यु देव अपना कार्य कर रहे हैं और वो भगवान कृष्ण के डर से अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये सर्वविदित है वैदिक सभ्यता में, जो विद्वान लोग हैं, और कुंती महारानी भी बहुत ही बड़ी पंडिताइन थी, विद्वान थी वो, भले वो कोई विश्वविद्यालय में जाकर कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर चुके थे, लेकिन वहां पर घर में रहते हुए भी कथा आदि सुन के उनको ये ज्ञान होता था। तो कुंती महारानी कहती हैं, भय भावनाय स्थितस्य, आप ऐसे भयभीत अवस्था में स्थित है जबकि सभी लोग आपसे डरते हैं, किसी से डरने की आवश्यकता आपकी नहीं है, तो ये इसको इसके बारे में सोचकर मेरा सर चकरा रहा है। माम विमोहयति, मैं विमोहित हो गई हूं। बड़ी विडंबना है ये, मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात, ये कैसे हो गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस संदर्भ में कि यदि श्री कृष्ण का भय नकली होता, केवल वो यदि नाटक कर रहे होते, तो कुंती महारानी ऐसा नहीं कहती माम विमोहयति कि मैं विमोहित हो गई। तो फिर वो कहते ठीक है, आप नकल कर रहे थे तो कोई इसमें घबराने की बात, कोई डावाडोल होने की बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण भयभीत हो गए थे, इसलिए इस बात को समझ नहीं पा रही है कुंती महारानी। आपको याद होगा कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे कि हम इस संसार में रहते हैं जो कि द्वंद्वों की दुनिया है। द्वंद्व क्या है? जैसे गर्मी, ठंडी, मान, अपमान, सुख, दुख इत्यादि, और इनका अनुभव हम करते रहते हैं। और ये द्वंद्व जो हैं कभी एक साथ नहीं रहते हैं, कभी एक का अनुभव करते हैं तो कभी दूसरे, कभी हम सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, ज्यादातर दुखी होते हैं, परंतु कभी कभी सुखी हो भी जाते हैं थोड़े समय के लिए। परंतु भगवान परम सत्य होने के कारण अपने अंदर ये समस्त प्रकार के द्वंद्वों का समन्वय करवाते हैं। तो भगवान में ये सारे द्वंद्व एक साथ में निवास करते हैं और इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ता। तो श्री कृष्ण भयभीत हो गए हैं और फिर भी सभी लोग उनसे डरते हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण वृंदावन में कभी कभी भूल जाते हैं उनकी स्वयं उनकी भगवत्ता को कि मैं भगवान हूँ। जिस प्रकार से वृंदावन के जो निवासी हैं वो भी अधिकतम भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। कभी कभी वो यहाँ वहाँ जानते हैं, कभी कभी यहाँ वहाँ वो याद करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, परंतु, और ये बहुत महत्वपूर्ण परंतु है, परंतु उनके प्रेम के मिठास में, मधुरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। माता यशोदा फिर भी मानती हैं कि कृष्ण मेरा बच्चा है। सुदामा, श्रीदामा, सुबल फिर भी मानते हैं कि श्री कृष्ण मेरा हमारा मित्र है। तरुण गोपियां फिर भी मानती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे प्रेमी ही हैं। बल्कि मथुरा द्वारका में ऐसा नहीं है, वहां पे वो थोड़े बहुत बौखला जाते, अरे क्या हो गया, ये भगवान है। ऐसे वृंदावन में नहीं होता। तो जिस प्रकार से कभी कभी जो वृंदावन के निवासी भूल जाते हैं, जानते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, अधिकतर भूल जाते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण भी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि तीन प्रकार के विस्मृतियां होती हैं भूल जाना। एक बद्ध जीवों के लिए, हम सब बद्ध जीव हैं इस भौतिक जगत में और हम सब महामाया के अधीन यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। अनादि काल से ये चल रहा है और जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं होंगे तब तक हमें जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के ही रहना पड़ेगा। तो हम भूल जाते हैं भगवान को। भगवान की बात तो दूर ही, अपने निजी अस्तित्व को भी, वास्तविक अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मरुतेनर्थं यत्कृतं चापि पद्यते। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब जीव माया के अधीन हो जाता है तो यद्यपि उसे माया से, इन तीन गुणों से कुछ लेना देना है नहीं, फिर भी वो अपने आप को माया का ही एक व्यक्ति मानता है, शरीर को ही स्वयं अपना स्व मानता है, अपने आप मानता है, जबकि वो एक परम व्यक्ति है, इस भौतिक शक्ति से वो परे है। तो ये एक प्रकार की विस्मृति है जो बद्ध जीवों के लिए है। अब दूसरी प्रकार की विस्मृति है भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए, जो कि भगवान की लीला में सम्मिलित हैं, चाहे वैकुंठ जगत में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, विशेष करके वृंदावन में, वहां पर भगवान की योग माया शक्ति काम करती है। इस प्रकार से कार्य करती है कि वहां पर यशोदा माता हो, नंद बाबा हो, तरुण गोपियां हो, गोपगण हो, वो सब भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। क्यों ऐसे विस्मृति योग माया दिलाती है शुद्ध भक्तों को? ताकि उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उतना ही मीठा बनी रहे। यदि वो याद करते रहेंगे मथुरा और द्वारका निवासियों की तरह कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उनके प्रेम के मिठास में बार बार में बाधा आती रहेगी, जैसे कि वसुदेव और देवकी के साथ हुआ। परंतु वृंदावन के निवासियों के प्रेम में कभी भी कोई बाधा नहीं आती, कोई विघ्न नहीं आते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जिसमें कि उनका, उनके प्रेम की मधुरता कमजोर हो जाती है। तो ये है योग माया का कार्य, अद्भुत कार्य। इसलिए माता यशोदा वात्सल्य प्रेम में श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती हैं, और यदि कोई कहे कि आपका पुत्र भगवान है तो वो मानेंगे नहीं, कहेंगे अरे आप क्या बकवास करते हो। और यदि मान भी लिया किसी उन्होंने तो कहती है कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, ये तो मेरा बच्चा ही है और मुझे दंड देना ही पड़ेगा इसे। तो यह है दूसरे प्रकार की विस्मृति। पहले प्रकार की विस्मृति उनके लिए है जो भगवान को भूले हुए हैं, जो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, स्वतंत्र होके भगवान से भौतिक सृष्टि का भोग करना चाहते हैं। और दूसरी प्रकार की विस्मृति प्रेम को बढ़ाती है, प्रेम को अधिक मीठा करती है। और एक तीसरे प्रकार की विस्मृति है, वो जीवों के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। अब हम कह सकते हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं और भगवान की अनेक परिभाषाएं हैं, उनमें से एक ये है कि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भूतकाल भविष्य सब कुछ जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, मैं सब जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते, तुम भूल जाते हो। तो ये सर्वज्ञता है, ये भगवत तत्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम तब तक भगवान को नहीं जानेंगे जब तक कि हम ये नहीं स्वीकार करेंगे कि भगवान सर्वज्ञ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि भगवान को पता नहीं है। परंतु सर्वज्ञता या तत्व के परे एक और सत्य है, और वो है रस, वो है लीला। तो लीला जो है ये तत्व से श्रेष्ठ है। तो लीला का आस्वादन करने के लिए कभी कभी अपने सर्वज्ञता को भूलना पड़ता है कृष्ण को। यदि श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने यदि केवल भयभीत होने की नकल करते तो श्री कृष्ण को भी वात्सल्य प्रेम का उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि माता यशोदा को नहीं मिलता, यदि वो याद रखते कि ये भगवान है। इसलिए वात्सल्य प्रेम का आनंद लेने के लिए शत प्रतिशत श्री कृष्ण भी भूलना चाहते हैं अपने आप को कि मैं भगवान हूं। ये भी भगवान की प्रेम शक्ति के कारण होता है, लीला शक्ति। जब भगवान की शक्तियां जो हैं, जो कि सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं, स्वाभाविकी बाल बल क्रिया च परस्य परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो भगवान के विविध शक्तियां हैं जो उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। जैसे ही भगवान की किसी इच्छा को जानती समझ लेती हैं ये शक्तियां, तो अपना कार्य शुरू कर देती हैं। तो जब ये लीला शक्ति समझ लेती है कि श्री कृष्ण अब वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं पूर्णतया, तो श्री कृष्ण की सर्वज्ञता को ढक देती है और श्री कृष्ण अब सोचने लगते हैं मैं तो बच्चा हूं, मैं माता यशोदा का पुत्र हूं, नंद बाबा का पुत्र हूं। उस समय श्री कृष्ण को याद नहीं रहता कि मैं बच्चा हूं, कि मैं भगवान हूं। देखिए साधारण जीवन में भी ऐसे होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे बर्तानिया अर्थात इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि अपने पोते के साथ अपने दफ्तर में खेल रहे थे। वो घोड़ा बन गए थे और बच्चा जो उनका पोता है उनकी पीठ पे था और वो अपने घुटनों पे चल रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राज्य के प्रधानमंत्री जिसके लिए कहा जाता था कि इस राज्य में सूरज अस्त नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य था उनका। तो इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी उनको सही आनंद आ रहा था ऐसे कार्य करने में। तो उस समय वो भूल गए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, केवल याद रखा कि मैं, ये मेरा पोता है, मैं इसका घोड़ा हूं। यदि वो याद रखते कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो प्रधानमंत्री का कोई ठाट होता है ना, तो कैसे वो झुक जाते, कैसे इस बच्चे को अपने कंधे पे लेते, कैसे उसका घोड़ा बन जाते। तो उस समय उस व्यक्ति को वो प्रेम का आस्वादन करने के लिए ये भूलना आवश्यक था कि वो प्रधानमंत्री है। उनको केवल ये वात्सल्य प्रेम का आनंद लेना था। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी भूल जाना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम है वो उस सर्वज्ञता को ढक देता है और भगवान को मुग्ध बना देता है। मुग्ध जानते हैं ना, मोहित, जो भगवान को मोहित कर देता है, मुग्ध। तो दो शब्द हैं, एक है सर्वज्ञता और दूसरा है मुग्धता अर्थ या मौग्ध्य। सर्वज्ञता जब होती है तो व्यक्ति मुग्ध नहीं हो सकता। जब मुग्ध होना है तो सर्वज्ञता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण मौग्ध्य या मुग्धता का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए तो वृंदावन है। वृंदावन की विशेषता तो यही है। इसलिए ऐसे मौग्ध्य का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं और कभी कभी प्रेम के अनुसार उनके सर्वज्ञता को आवृत किया जाता है या उसको खोला जाता, अनावृत किया जाता है। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का निष्कर्ष ये है, पहली बात कि कृष्ण भगवान इतने मोह मुग्ध हो जाते हैं माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम से कि वो अवगत नहीं होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मैं भगवान हूं, पहली बात। और दूसरी बात, और नहीं जानते इसलिए वास्तव में भयभीत हो जाते हैं, नकल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सर्वज्ञता वृंदावन में कभी कभी प्रकट हो जाती है। उनकी लीला शक्ति, उनकी उनका प्रेम जो है कभी कभी उनके सर्वज्ञता को बाहर आने के लिए अनुमति देता है। कब? जब ब्रजवासियों के लिए खतरा होता है, जब कोई असुर आते हैं या कोई दावानल, जंगल में आग लग जाती है, सारे ब्रजवासी वहां फंसे हुए होते हैं, तो श्री कृष्ण अपने सर्वज्ञता को प्रकट करते हैं। अरे मैं तो भगवान हूं, ये अग्नि क्या है? अग्नि को निगल लेते हैं। हम लोग अग्नि को नहीं निगल लेते। कभी कभी ऐसे लोग आपने चित्र देखे होंगे, वो जादूगर या कोई योगी होते हैं जो एक जलते हुए किसी चीज को अपने मुंह में डाल लेते हैं। आपने देखा ऐसे कभी चित्र? ऐसे लोग करते हैं तो सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये एक शक्ति है, ये कहाँ से आ रही है? ये तो एक अणुमात्र शक्ति है। लेकिन ऐसा कोई जादूगर या योगी है जो कि संपूर्ण बड़े दावा नल को, सारे जलते हुए जंगल के आंखों वो पी ले, निगल ले? नहीं, भगवान योगेश्वर हैं तो आसानी से निगल सकते हैं। परंतु यदि वो केवल मुग्ध होते उस समय और सर्वज्ञता उनकी नहीं होती तो ब्रजवासियों की रक्षा इस प्रकार से नहीं कर पाते। उसी तरह चाहे वो पूतना का वध करना हो, शकटासुर का हो, अघासुर हो, बकासुर हो, इतने असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण तब कर पाए जबकि सर्वज्ञता प्रकट हो गई और उस समय और केवल उस समय के लिए भगवान की सर्वज्ञता रही, फिर से अपने आप मुग्ध हो गए। जब इंद्रदेव को उन्होंने डांटा गोवर्धन लीला के बाद कि आइंदा ऐसे घमंडी नहीं होना, उस समय सर्वज्ञता प्रकट हुई थी। फिर बाद में तुरंत इंद्रदेव की ओर देखा भी नहीं, और मैं तो गाय को चरा रहा हूं, मैं तो ग्वालवाल हूं, बस अपने गायों को चराते हुए रह गए। कभी कभी जब वो गायों के साथ चरण विचरण करते थे, गायों को चराने के लिए जाते थे जंगल में, तो रास्ते में अनेक देवलोक के निवासी आते थे, उनकी आरती वगैरह उतारते थे। कभी ब्रह्मा जी भी आते थे और श्री कृष्ण सोचते थे, अरे ये कौन है चार सर वाले व्यक्ति, हमने तो कभी देखा नहीं है, हमारे तो एक ही सर है, तो तुम्हारे एक सर, तुम्हारे ये चार सर वाले कहाँ से आ गए? तो वो आनंद लेते थे और ब्रह्मा जी भी चकाचौंध हो जाते थे, उनके चारों सर चकरा जाते थे। यही मेरे आराध्य देव हैं, उनकी आरती उतारते और श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, मेरी आरती उतार रहे हैं। और बाकी लोग जब आते थे, कभी कभी रास्ते में ब्रजवासी देखते थे कि यहाँ आरती की सारी सामग्री पड़ी हुई, उनको लगता था ये कहाँ से आ गए सब, उनको पता नहीं चलता था। तो कभी कभी वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला में मोह मुग्धता की प्रधानता होती है, और कभी कभी क्वचित सर्वज्ञता की प्रधानता होती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीला है। इसलिए जब श्री कृष्ण यहाँ रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेण, मुहुश्वास, हमें जानना चाहिए कि वो वास्तव में डरे हुए थे, क्योंकि वो वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो अब हम तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे, दामोदर अष्टकम के
इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृतिवन्दे
अनुवाद। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूं। तो तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि इति या इति दृक, इति शब्द से कहते हैं कि ये लीला किस, कौन सी लीला? दामोदर लीला। तो दामोदर लीला की बात हो रही है, आगे बढ़ा रहे हैं। और सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं कि इस पंक्ति में, इस श्लोक में भगवान कृष्ण के गुण विशेष का वर्णन है। आपको याद होगा कि अभी तक पिछले दो श्लोकों में कौन से विशेषताओं का वर्णन हुआ है? लीला विशेष, तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष। और अब इस तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि वर्णन करने वाले हैं गुण विशेष, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में कहेंगे। भगवान कृष्ण के गुण अनंत हैं और ये सारे गुण दिव्य हैं, परिपूर्ण हैं। और इसमें ये बतलाया जाता है, इस श्लोक के द्वारा सत्यव्रत मुनि ये बतलाना चाहते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। आपको याद होगा कल शाम की चर्चा से कि हमने बताया था कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को इसलिए बांध दिया क्योंकि उनका वात्सल्य प्रेम था, और श्री कृष्ण बंधने के लिए तैयार इसलिए हो गए क्योंकि उनका एक गुण है, और वो गुण कौन सा है? भक्त वश्यता। वो अपने भक्त के वश में आते हैं, या और सही तरह से कहा जाए तो अपने भक्त के भीतर जो भक्ति है उसके वश में वो आ जाते हैं और इसमें वो बड़ा आनंद लेते हैं भक्तों के वश में आने की। तो इति या ईदृक अर्थात इस तरह से, ऐसे ही जैसे है वैसे। तो इति ईदृक, तो भगवान श्री कृष्ण की ये दामोदर लीला की चर्चा करते हुए कह रहे हैं। और सनातन गोस्वामी कहते हैं इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये न केवल दामोदर लीला है परंतु अन्य जितने भी और मनमोहक श्री कृष्ण के बाल लीला हैं उनका भी संबोधन इस इतिदृक शब्द से होता है। तो अब सत्यव्रत मुनि ऐसे बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अति मनमोहक बाल लीलाओं का गुण क्या है। गुण ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण को वश में कर लेती हैं। स्व लीला भी, अपने अलौकिक असाधारण बड़े अद्भुत अप्रतिम लीलाओं से वो सबका मन मोहित कर रहे हैं। स्व लीला भी, स्वस्य लीला भी, स्व मतलब अपनी लीलाओं के बारे में। तो किस तरह की लीलाएं हैं जिनसे कि सारे भक्त मोहित हो जाते हैं, अवश्य ये दामोदर लीला एक है। और सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 11वें अध्याय से दो श्लोकों का उल्लेख करते हैं। ये 11वें अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं वृंदावन में। तो इस 7वें श्लोक में इस 11वें अध्याय के शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपीभिः स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धः तद्वशो दारु यंत्रवत। गोपीभिः, गोपियों के द्वारा, स्तोभितः, जब वो प्रेरित किए गए थे। कैसे प्रेरित किए गए थे? अरे करो करो कृष्ण, कभी तालियां बजा रही थी, कभी कृष्ण को प्रलोभन दे रही थी कि मैं तुम्हें मिठाई दे दूंगी, तुम ऐसे करोगे तो मिठाई दूंगी। जैसे बड़े लोग कभी कभी बच्चों को कोई कार्य करने के लिए कोई प्रलोभन देते हैं। आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं इन चीज़ों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बच्चे, छोटे बच्चों को कोई कार्य कराना चाहते हैं आप तो कुछ प्रलोभन देंगे, देखो आप मिठाई दूंगी, चलो कर लो। तो सारी गोपियाँ, गोपी भी स्तोभितो, उन्होंने, गोपियों ने श्री कृष्ण को ऐसे भले मिठाई से हो, अपने मधुर वचन से हो, ताली बजाने से हो, उनको प्रेरित किया। क्या करने के लिए? नृत्य करने के लिए। अनृत्यत, तो श्री कृष्ण नाचने लगे, नृत्य करने लगे। वो भगवान श्री कृष्ण जिनके धुन पर समस्त सृष्टि जो है नाच रही है, नृत्य कर रही है, वह गोपियों के ताली बजाने से, गोपियों के गीत गाने से अभी नृत्य कर रहे हैं। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत। तो ये भगवान है, भगवान का शब्द यहां जानबूझकर प्रयोग किया है शुकदेव गोस्वामी ने कि वो भगवान होते हुए भी बालवत, एक बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और इस तरह से प्रेरित किए जाने पर तो कभी कभी नृत्य करते, क्वचित उद्गायती, तो कभी गाते, क्वचिन मुग्धः, क्वचिन बिल्कुल हंसते थे, बड़े मीठे ढंग से हंसते थे। इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया? सारे गोपियों के मन को जीत लिया और स्वयं तद्वशो दारु यंत्रवत, वो गोपियों के हाथों में दारुवत, दारु यंत्रवत, एक यंत्र अर्थात एक खिलौना या एक गुड़िया, दारु अर्थात लकड़ी, कठपुतली। तो ऐसे प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण इन गोपियों के हाथों में एक कठपुतली बन गए और इस प्रकार से तद्वशः उनके वशीभूत हो गए श्री कृष्ण। तो ये है एक उदाहरण जो सनातन गोस्वामी दे रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण ऐसे मधुर प्रेम के वशीभूत होकर उनके भक्तों के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। और अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी चाहे माता यशोदा हो या अन्य गोपियां हो, श्री कृष्ण से कहते थे, कहती थी, अरे देखो वो पादुका जरा ले आना, वो आसन जरा ले आना। तो श्री कृष्ण जाते थे, बड़े आज्ञाकारी बन के जाते थे। जब उनको ऐसी आज्ञा दी जाती थी तो मना नहीं करते थे, जाते थे और उठा के ले आते थे। और जब वो उठा नहीं सकते थे तो उस वस्तु को उठा के नहीं जब उठाना हो पा रहा था तो उसके केवल स्पर्श करते थे और फिर ऐसे करते थे, बाहु क्षेपम चकुरुते, कि मैं नहीं उठा रहा हूं लेकिन है मुझ में शक्ति, मैं ऐसे बाहु क्षेपम ऐसे करते। वास्तव में शक्ति थी उनमें, एक पादुका उठाने की, मेज उठाने की, आसन उठाने की बात तो दूर रही, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठा रहे, उनको उड़ा रहे हैं आसमान में, परंतु बाल लीला में अभी वो यहां पे क्या है, मुग्ध प्रधान, मुग्धता प्रधान, मोह मुग्ध हो गए हैं गोपियों के प्रेम से, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे कार्य कर रहे मानो कि उनको उठाना नहीं हो पा रहे, वास्तव में नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि सर्वज्ञता नहीं थी। जैसे हनुमान भी भूल गए थे ना कि मुझ में ऐसी शक्ति है, जब उनको याद दिलाया गया तब याद आया, अरे हाँ मैं तो इतना सब कर सकता हूं। तो वही सिद्धांत है। तो खैर, फिर स्वानाम च प्रीतिम आवहन, इस प्रकार से स्वानाम अर्थात जो उनके अपने भक्त हैं उनकी प्रीति को उन्होंने निमंत्रित किया या आमंत्रित किया। और तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में ऐसी बाल लीलाएं की केवल उनके भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए, न केवल अपने आनंद की वृद्धि के लिए परंतु भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए। और इन लीलाओं के द्वारा वो हम सब तक भी पहुंचते हैं। हम तो सब बद्ध जीव है ना, परंतु हम जब इन लीलाओं के बारे में सुनते हैं हमें भी आनंद आता है, और इस आनंद से संसार के सुख का जो तथाकथित आनंद है वो घटित, वो घटने लगता है हमारे हृदय में। इसलिए दर्शयम तद्विदाम लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम, तो उन्होंने तद्विदाम जो ऐसे लोग हैं कि ऐसे इन सिद्धांतों को जानते हैं, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, वृंदावन की लीला को जानते हैं, ऐसे भक्तों को के सामने ये सब लीला दर्शाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और किस सिद्धांत को दर्शाते हैं, भृत्य वश्यताम, भृत्य अर्थात सेवक अर्थात भक्त, भक्त के मैं वश में हूं इस बात को दर्शाने के लिए भक्तों के सामने, अभक्तों के सामने नहीं। और यहां यह बताया जाता है कि अभक्तों के सामने वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि भक्त लोग अभक्तों के हृदय में ऐसा प्रेम नहीं है। भगवान बाल चेष्टितः व्रजस्य उवाह वै हर्षम, तो वृंदावन के निवासियों को हर्षित करते थे बाल चेष्टितः, चेष्टितै ही अपने बाल लीलाओं के द्वारा। तो भगवान ने बाल लीलाएं की मुग्ध होकर, तो ऐसा उदाहरण यहां पर सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं इतिदृक स्वलीला भीर, और ऐसे स्वलीला के कारण अपने लीलाओं के ऐसे प्रदर्शित करके वो क्या कर रहे थे, आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम, अपने प्रिय भक्तों को दिव्य आनंद के सरोवर में डुबो रहे थे। तो इसके विस्तार में हम चर्चा और कल करेंगे, कल शाम को क्योंकि इसके बारे में भी थोड़ी व्याख्या करना आवश्यक है और आने वाले श्लोकों की चर्चा भी हम कर लेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में अब गुण विशेष का वर्णन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं कि कैसे भक्तवश्यता का गुण भगवान प्रदर्शित करते हैं। और भक्तवश्यता का गुण क्यों है? क्योंकि उनके भक्तों में इस ऐसे एक विशेष गुणवत्ता की मधुरता है जो और कहीं भी नहीं पाई जाती है। श्री यशोदा दामोदर की जय, श्री दामोदर लीला की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। हाँ, एक दो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आजकल पिछले दो दिनों से प्रश्न के लिए हमने समय नहीं रखे थे, तो दो तीन प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, विषय से संबंधित।
हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आप बता रहे थे कि भगवान विस्मरण, भगवान भी विस्मरित हो जाते, भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं। तो लेकिन अगर कोई जैसे जीवात्मा भूलते हैं तो वो योग माया के कारण भूलते हैं, योग माया के प्रभाव के कारण वो भूल जाते हैं कि वे मतलब भगवान की भगवत्ता को भूलते हैं। भगवान किसके प्रभाव में आके भूल जाते हैं? मतलब वो अपनी शक्ति के कारण ही भूलते हैं।
हाँ, अपनी शक्ति ही, प्रेम, उनका उनकी प्रेम शक्ति होती है, वही एक शक्ति। वास्तव में भगवान की एक ही शक्ति है, परंतु वो एक शक्ति के अलग अलग नाम होते हैं। जब उनके कार्य अलग होते हैं तो कार्यों के अनुसार उनके विविध नाम हो जाते हैं। तो वैसे तो अंतरंगा शक्ति भगवान की है, प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेम शक्ति। जब भगवान के प्रेम की का वर्धन करना होता है, प्रेम के रस का आस्वादन बढ़ाना चाहते हैं श्री कृष्ण, तो उनकी शक्तियां फिर उनकी सहायता करती हैं। और ऐसे विस्मरण में भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। भगवान ज्यादा आनंद इसमें पाते हैं कि जब वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। जब उनको याद आता है कि मैं भगवान हूं तो भगवान के अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है, उतना आनंद नहीं आता उनको जितना कि जब वो भूल जाते हैं। इसलिए मौग्ध्य प्रधानता श्रेष्ठ है सर्वज्ञता के तुलना में। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रश्न है? ठीक, अंतिम एक और प्रश्न।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे बोला आपने कि अगर ब्रजवासियों को पता चले कि कृष्ण भगवान है तो भी उनके वात्सल्य में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उनको पता चले कि कृष्ण भगवान नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा?
कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
पर अगर द्वारका में ऐसा पता चले कि कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या होगा?
ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर वो द्वारका नहीं होगा, फिर वो मथुरा नहीं होगा। द्वारका तो भगवान का धाम है ना, तो साधारण तो कोई स्थान है नहीं, और कृष्ण तो भगवान है। ऐसा कभी समय नहीं था जब कृष्ण भगवान नहीं थे, ना कभी ऐसे होगा जबकि वो नहीं रहेंगे भगवान, तो ऐसे तो संभावना है ही नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।